अब शांति। अभी हमारे बीच राजयोगिनी डॉक्टर सविता बहन पधारी है। एक हाथ की ताली से सब आपका स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसे तो हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर बनने की बड़ी ऊंची पढ़ाई है, मेहनत की पढ़ाई है, और उस पढ़ाई पढ़ने के बाद स्थूल कमाई करने के बजाय आपने अविनाशी अनेक जन्मों की कमाई करना शुरू किया। समझ सकते हैं कितना निश्चय होगा, कितनी मेहनत के बाद, डिग्री लेने के बाद स्थूल धन को महत्व न देते हुए बाबा के अमूल्य ज्ञान रत्नों को, अविनाशी धन को, अविनाशी कमाई को महत्व देकर आप इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। करीब 35 सालों से आप इस सेवा में, इस बेहद यज्ञ में सेवारत हो। खास दादियों की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, तभी भी आप दादियों का भी, विशेष स्थूल में शरीर का भी ध्यान रखने की भी सेवा करते हो, लेकिन साथ साथ बाबा ने जो सिखाया है कैसे ज्ञान की दवाई देनी है, योग के इंजेक्शन देने हैं, ये भी आप सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हो। राजयोग शिविर भी कराते हो, तो साथ साथ नयों के लिए तो शिविर होती है, पुराने भाइयों के, बहनों के लिए, कुमारियों के लिए भी आप बहुत अच्छी तरह से उनको भी पढ़ाते हो, क्लासेस कराते हो। खास अपनी महिला विंग है, उस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो, तो आपके लिए यही कहेंगे कि इस कांटों की पगडंडी पर आप हस्ती एक डगर हो, तारों के बीच आप एक ध्रुव तारा हो। हमें ऐसी एक अचल, अडोल, स्थित प्रज्ञ, स्थिर्यम, मन बुद्धि वाली विशेष आत्मा जो निरहंकारी है और बहुत ही सरल रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। आज आपका विषय है स्वमान के अभ्यास द्वारा शक्तिशाली स्थिति। स्वमान के अभ्यास द्वारा शक्तिशाली स्थिति, तो मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर सविता बहन को कि आप अपना अनुभव युक्त क्लास सबके सामने रखेंगे।
ओम शांति। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, शिव बाबा ने हमें रचयिता और रचना का ज्ञान समझाते हुए बहुत सी स्मृतियां दिलाई हैं। कहेंगे हमें स्मृति के तिलकधारी बाबा ने बनाया है, और वो स्मृतियां, उसमें सबसे पहली स्मृति मैं आत्मा हूं। लेकिन सिर्फ आत्मा हूं नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं, और उस कौन सी आत्मा में ही सारे स्वमान समाये हुए हैं। बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे तीनों कालों को जानते हैं। हम शायद वर्तमान ही देखते हैं, लेकिन बाबा तो हमारे तीनों कालों को जानते हैं। तो बाबा को ये पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, कि हम पूर्व में क्या थे। हम बच्चे जब इन सब को सुनते हैं तो शायद खुश तो बहुत होते हैं, कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। स्वमान माना अपने आप का सम्मान, जानना, मानना और स्वरूप में लाना। जिस नजर से, जिस सम्मान से बाबा हमें देखता है, उसी नजर से हम भी अपने आप को देखते हैं और समझते हैं और व्यवहार में आते हैं। या फिर ये समझ लेते हैं कि बाबा तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, हम कहां इतने ऊंचे हैं, सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है। मेरे को याद है जब मैं पहली बार बाबा से मिली थी, फर्स्ट टाइम, तब मैं नई नई ज्ञान में थी, मैंने सिर्फ कोर्स ही किया था उस समय, ज्यादा क्लासेस नहीं किए थे, मैं पढ़ती थी उस समय कॉलेज में। तो बाबा ने मुझे, उस समय बाबा पर्सनल मिलते थे और स्टेज पर जाकर के हरेक को बाबा टोली भी देते थे, दृष्टि वरदान देते थे। तो उस समय बाबा ने मुझे दो तीन बातें ऐसी कही, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि ये कहां इतनी ऊंची बात करते हैं, हम थोड़ी ऐसे हैं। बाबा ने मुझे कहा, कुमारी माना 100 ब्राह्मण से उत्तम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाली हो। ऐसे बाबा ने मुझे तीन चार बातें कही, जो उस समय के हिसाब से मैं बिल्कुल अनफिट थी इसमें, तो मुझे जरा भी वो स्वीकार नहीं हुआ। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हम वो सम्मान जो बाबा हमें देते हैं उसे हम इतना जल्दी स्वीकार नहीं करते। फिर धीरे 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 जब समझ में आया, तब उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, बाबा ने बिल्कुल ये बात सही कही थी। श्रेष्ठ आत्मा क्या होती है और 100 ब्राह्मण से उत्तम श्रेष्ठ जीवन क्या होता है। तो कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, आपसे ही, क्योंकि आप सुन रहे हैं भट्टी में क्लासेस, तो बहुत कुछ रिवाइज हुआ है। तो आपसे ही पहले शुरू करते हैं, कौन से स्वमान बाबा ने हमें संगम युग में दिए हैं जो हमें हमारी महानता की स्मृति दिलाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आज का भी सम्मान मिला होगा ना, यही मिला है। एक जना बोलेंगे तो समझ में आएगा, मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। और बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। और बहनों की तरफ से कम बोल रहे हैं, हाँ, महान आत्मा हूँ, तपस्वी आत्मा हूँ, और आधार मूरत उधार मूरत आत्मा हूँ, राज ऋषि हूँ। अच्छे अच्छे सम्मान बोल रहे हैं। हाँ जी, नूरे रतन हूँ, बाबा के नैनों की नूर हूँ, दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मस्तक मणि हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। ठीक है, और भी इतनी ही लिस्ट और भी होगी। हाँ जी, से विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ। तो कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, और अगर ये स्वमान हम स्मृति में लाते हैं, सबसे बड़ी बात है स्मृति स्वरूप बनना, उसको अनुभव करना, तो वो नशा और खुशी हमें होगा। जैसे कहते हैं कि घोटने से नशा चढ़ता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जब तक उस चीज को हमने अपना नहीं बनाया है, तब तक वो खुशी और नशा हमें अनुभव नहीं होगा। और जितना स्मृति में रखेंगे उतना ही सामर्थ्य आएगी, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है। अगर मैं सोचती हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मेरी स्थिति कैसे बनेगी, शक्तिशाली अपने आप बनेगी, क्योंकि मेरी स्मृति में ही मेरी शक्तियां हैं, मैं अधिकारी आत्मा बन जाती हूँ उन शक्तियों को यूज करने के। ऐसे ही मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, मानो ये मैं स्मृति रखती हूँ जो आज का स्वमान है कि मैं महान भाग्यवान हूँ जो भी। तो हर कदम में पदम है। क्यों इतने भाग्यवान हैं? क्योंकि एक तो सर्व प्राप्ति कराने वाला बाबा स्वयं भाग्य विधाता ही मेरा अपना है कि नहीं है? क्यों इतने भाग्यवान हैं? क्योंकि भाग्य बनाने वाला भगवान ही मेरा हो गया है, और फिर उसके याद में जो भी कर्म करते हैं उस हर कदम में पदम समाये हुए हैं, हर कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। तो इतनी कमाई करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। कितने भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, बाबा कहता है एक एक कदम उठाने पर पदम कमा लें, ऐसा हो सकता है? तो बाबा कई बार कहते हैं आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। देखने में तो साधारण लगते हैं, लेकिन रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो सकते हैं? इतना ऊंचा स्वमान हो सकता है? तो कैसे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं? क्योंकि स्थूल सूक्ष्म सब खजानों के मालिक हैं। ये जो कमाई है वर्तमान की सूक्ष्म रूप की कमाई, जन्म जन्मांतर के लिए तन मन धन संबंध सर्व भाग्य के अधिकारी बनाने वाली है, सर्व प्राप्ति संपन्न बनाने वाली, ऐसे कहेंगे ना। और बाबा कहता है सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन लगभग पूरे कल्प, सिर्फ अंत के ही कुछ जन्म ऐसे होते हैं जब आत्मा पूरी तरह से तमो प्रधान होती है तो कुछ कमी का अनुभव करने लगती है। तो इतने महान भाग्यवान उस भाग्य को यदि हम स्मृति में रखेंगे तो कितनी खुशी होगी। और फिर खुशी जैसी खुराक नहीं, बाबा ने हमें ये बहुत बार कहा है कि सदा खुश रहना है और खुश करना है, माना खुशी बांटना है। तो पहले खुश कैसे रहेंगे? आज की दुनिया में तो ऐसी बहुत सी बातें आती हैं जो हमारी खुशी गुम करने वाली होती हैं। लेकिन जब स्वमान की स्मृति रहती है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो वो जो सूक्ष्म खुशी है वो हद की अप्राप्ति से होने वाली या माया से आने वाले विघ्नों के जो प्रभाव हैं उसको समाप्त करके हमें विघ्न विनाशक बना देती है। तो खुशी गुम नहीं होती है, खुशी स्थायी रहती है। और स्मृति से शक्ति आती है। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हनुमान जी को जब लांघना था समुद्र को, तो वो तो समुद्र देखकर ही खड़े हो गए, कहा इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार करके लंका में जा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो जामवंत जो थे उनके साथ, वो उनकी शक्ति को जानते थे, हनुमान जी भूले हुए थे अपनी शक्ति को, तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि आप तो पवन पुत्र हो, आप तो उड़ करके भी जा सकते हो, आपको समुद्र लांघने की कहाँ जरूरत है। और जब ये सब बातें उन्हें याद दिलाई गई तो फिर उनकी वो स्मृति से जागृति हुई और वो समुद्र उड़कर पार करके गए। तो ऐसे ही हम हैं, भले देवात्मा हैं, पुण्य आत्मा हैं, पूज्य आत्मा हैं, पूर्वज आत्मा हैं, जो भी आप सबने सुनाया वो सब कुछ है, लेकिन अभी तक विस्मृति में थे ना, भूले हुए थे। वो एक कहानी भी बताते हैं कि कैसे वो एक राजा का बेटा जो है वो भेड़ियों के उसमें चला गया और भेड़िया ही बन गया, वो अपने आप को भूल ही गया कि मैं राजकुमार हूँ। पहले तो यही भूल गया कि मैं इंसान हूँ, भेड़ियों जैसे आवाज निकालने लगा, भेड़ियों जैसे चलने लगा। बाद में शिकार के समय राजा के सामने वो आया ग्रुप, तो वो बच्चा जो है वो तो समझ गए इंसान का बच्चा है, भले भेड़ियों जैसा चलता है ना। उसे उठाकर लाए तो पता चला निशानियों से कि ये तो वही राजकुमार है जिसे भेड़िया उठाकर ले गया था, लेकिन अब तो भेड़िया बन चुका है, इंसान भी नहीं है, राजकुमार की बात तो छोड़ो। तो फिर उसको वापस इंसान बनाने में बहुत समय लगा। एक खास टीचर उसके लिए रखा गया, उसके लिए इनाम रखा गया, और कितनी उसको रोज वो ट्रेनिंग दी जाती थी कि इंसान कैसे चलता है, इंसान कैसे बोलता है, इंसान कैसे व्यवहार करता है। तो दिमाग तो इंसान का था ना, तो धीरे 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 वो पुनः उस स्थिति में आया। और फिर राजा ने कहा कि सिर्फ इंसान नहीं, ये तो राजकुमार है, ये साधारण इंसान नहीं है। तो इसको राजकुमार वाले लक्षण, वो रॉयल लक्षण इसके अंदर होने चाहिए, ऐसा तैयार करना है। और उसमें उसको फिर बहुत समय लगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो राजकुमार नहीं था, लेकिन भूल गया। तो हम भी बाबा के बच्चे इस पूरे ड्रामा के चक्र में जब आते हैं तो लास्ट तक आते आते पूरी तरह से अपने आप को भूल चुके होते हैं। बाबा वो भेड़िया था, बाबा कहता है हम क्या बन जाते हैं, बंदर, बंदर बुद्धि बन जाते हैं, माना जैसे बंदर व्यवहार करता है। हमारा व्यवहार, पांच विकार सबसे ज्यादा किस में होते हैं, बंदर में होते हैं। तो हम भी उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, बंदर से मंदिर लायक, बंदर से पुरुष देवता। हम कैसे बनते हैं, जब बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। फिर स्मृति दिलाकर छोड़ नहीं देते, केवल स्मृति दिलाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन लेकिन बार 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 जब हम उसका अभ्यास करते हैं तब जाकर के वो स्वरूप हमारा बनने लगता है। तो रोज अमृत वेले अपने आप को किसी ना किसी स्वमान में स्थित करना है और सारा दिन उस स्वमान का अभ्यास मन में रहे। या बाबा मुरली में कोई देते हैं, मानो आज की मुरली से मुझे ये स्वमान मिला, वरदान में कोई ना कोई स्वमान होता है। तो हर घंटे में अपने लिए अपने को निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे 5 बार जरूर इस स्वमान को स्मृति में लाना है। और स्मृति में लाते हुए उसके अनुभव में, कहा जैसे मैं बाबा के नैनों का नूर हूं, तो नैनों का नूर होना क्या है, बाबा का मुझे कितना स्नेह मिलता है। जैसे माँ कहेगी बच्चा मेरी आंख का तारा है, माना वो इतना लाडला इतना प्यारा है भगवान का। तो हम भगवान के नैनों में समाये हुए हैं, यानी भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, उसको अनुभव करना। नैनों के नूर का क्या मतलब है उसका विस्तार करके थोड़ा उसे अनुभव करना। आप जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान है या महान भाग्यवान है या विजयी रतन है तो कैसे, तो सारा दिन यदि मैंने वो रखा अपने लिए समान, तो हमने ये देखा है कि बाबा खुद भी अनुभव कराते हैं। जैसे बाबा कहते हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, अगर मैंने एक वो संकल्प किया तो वो समान का क्या अनुभव है, कोई ना कोई व्यक्ति या परिस्थिति निमित्त बनती है जो हमें उस विशेष सोमान का अनुभव करा देती है कि देखो आज ये मेरा सोमान था, बाबा ने मुझे ये अनुभव कराया। मैं बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ, दिल तख्त नशीन, बाबा के सभी बच्चे हैं। बाबा कहता है बाबा का तख्त इतना बड़ा है कि उस पर सारे संसार की आत्माएं बैठ सकती हैं, बाबा के बच्चे तो उसकी तुलना में बहुत कम हैं। बेहद का तख्त है, लेकिन उस तख्त पर बैठने की शर्त है, इसलिए सब नहीं बैठ पाते ना। बाबा के बच्चों में भी सभी नहीं बैठ पाते हैं, सभी दिल तख्त नशीन नहीं बन पाते हैं। क्या शर्त है उसकी, क्या शर्त है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, ऐसे और आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चा बनना है, सच्चे दिल पर साहब राजी। एक शर्त है, भगवान को सच्चाई सफाई पसंद है, क्योंकि वो परम पवित्र है ना, तो उसके लिए अंदर बाहर एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फरिश्ता। ट्रांसपेरेंट कौन होता है, तो जो अंदर बाहर एक जैसे हैं। आज कलयुग की विशेषता क्या है, अंदर कुछ और होते हैं बाहर कुछ और होते हैं, ऐसा नहीं। ब्राह्मण माना मन पूरी तरह से निर्मल हो, शुद्ध हो, सच्चाई सफाई वाला हो, यहाँ तक कि व्यवहार में भी, जैसे ईमानदारी सत्यता भी लोग कहते हैं। फिर दूसरा, एक बाप दूसरा ना कोई, मेरा तो एक बाबा ही है, बाबा ही संसार है, किसी व्यक्ति वैभव का आकर्षण ना हो। निभाना है सबको, प्रवृत्ति में रहते हैं, सब कार्य भी करना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन बुद्धि का आधार कौन है? एक बाबा ही। वो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे होते हैं। तो अगर मैंने आज का सोमान लिया, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन हूं, तो मुझे फिर पूरा दिन चेक करना है मेरी ये धारणा रही तो। देखो बाबा आपको जरूर वो स्थिति का अनुभव कराएगा, दिल तख्त नशीन क्या होता है। तो इस तरह से सोमान का हर रोज अनुभव करें। और बाबा कहता है स्वमान तब टिका रहता है जब देह अभिमान का त्याग हो। देह अभिमान है तो स्वमान नहीं हो सकता, अभिमान और स्वमान एक दूसरे के ओपोजिट है। अभिमान की निशानी क्या है? अभिमान की निशानी है अपमान बहुत जल्दी महसूस हो जाएगा, फीलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी किसी भी छोटी सी बात में। अगर मुझे फीलिंग आती है इसका मतलब सूक्ष्म में देह अभिमान है। दूसरा, अभिमान वाला जो होता है, कुछ जो सूक्ष्म निशानियां हैं अभिमान की जो सोमान में हमें स्थित नहीं होने देती, कि वो हमेशा अपने को राइट समझते हैं, जो मैंने कहा वो सही है, दूसरे को हम गलत समझते हैं। फिर तीसरी बात होती है कुछ ना कुछ थोड़ा रौब का अंश होता है। बाबा कहता है रुहाब में रहो, लेकिन रुहाब की बजाय रौब। और फिर सोचते हैं आज की दुनिया में थोड़ा रौब तो रखना ही पड़ेगा, बिना रौब के तो काम नहीं चलता है। तो रौब का मतलब थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करना दूसरों को। फिर जो अभिमान वाला होता है वो दूसरे की तारीफ नहीं सुन सकता। सूक्ष्म में अगर मेरे सामने किसी की कोई बात सुनाई जा रही है और उनकी महिमा की बात है तो हम तुरंत काट देंगे उसको। हाँ, हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम अपने आप को ज्यादा समझते हैं और फिर दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या की भावना भी थोड़ी ज्यादा होती है, जल्दी क्रोध आ जाता है किसी की भी बात पर। जैसे अपमान महसूस होगा तो क्या होगा? क्रोध आएगा। या फिर थोड़ा जिद का संस्कार होगा, अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपनी गलती के बजाय सिद्ध करेंगे ना, मेरा नाम कम नहीं होना चाहिए, मैं कमजोर सिद्ध नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम अपनी बात दूसरों के ऊपर डालते हैं। ये भी देह अभिमान है। तो अगर ये अभी तक हमारे अंदर हैं, तो जो बाबा ने हमें सोमान दिए हैं वो सोमान में स्मृति में हम नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्प ज्यादा पैदा होते हैं और व्यर्थ संकल्पों में बुद्धि जाने से क्या होगा? एनर्जी जाएगी। व्यर्थ संकल्प हमारे मन की शक्ति को कम करते हैं तो हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं करते। या कई बार इस कारण नेगेटिव संकल्पों में भी बुद्धि चली जाती है, क्यों, क्या, कैसे, उसमें भी बुद्धि गई तो भी मनसा कमजोर हो जाएगी। तो पहले देह अभिमान का त्याग, फिर स्वमान में स्थित होना। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में स्वमान को धारण किया तो बाबा जो हैं वो सभी के द्वारा सम्मान के अधिकारी बने। स्वमान और सम्मान का भी संबंध है। जितना हम स्वमान में रहते हैं स्वतः सम्मान मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं होती है। और हम सम्मान देने वाले दाता बन जाते हैं, मांगने की बजाय देने वाले दाता बन जाते हैं। दुनिया में इसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं लोग। जिसका आत्म सम्मान अच्छा होता है वो दूसरों को भी उसी नजर से देख पाता है। और अगर आत्महीनता की भावना है तो फिर जैसे जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। तो यहाँ बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने इस बात को अपने जीवन से सिद्ध करके दिखाया कि बाबा सदा सम्मान में रहे तो हर आत्मा को बाबा ने सम्मान की नजर से देखा। छोटे बच्चे जब बाबा के सामने आते थे तो बाबा उनको सम्मान का स्नेह देते थे और सदा भविष्य में यही आत्माएं विश्व कल्याणकारी बनने वाली हैं इस ऊंची नजर से देखते थे। बाबा ने तो चरणों के दास दासी से, ऐसे कहेंगे ना, सिर का ताज बनाया। बाबा तो अपने आप को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाते थे, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। हाँ, जैसे लौकिक में भी क्या कहेंगे, माता पिता बच्चों के सर्वेंट होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना। हाँ, बच्चे मालिक होते हैं, माता पिता तो उनके सेवाधारी होते हैं। तो क्योंकि वो हमारा मात पिता है, अनादि मात पिता है, तो बाबा बच्चों के सामने हमेशा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, सेवाधारी बनकर ही रहे और हमेशा निमित्त भाव। कभी भी अपनी अथॉरिटी का अहंकार बाबा को नहीं रहा। और ये देखा कि जो दादियां उस समय बच्चे थे, सचमुच वो विश्व कल्याणकारी बने। गुजार दादी अपना ये अनुभव सुनाती हैं कि बाबा जब हमें कहते थे कि ये विश्व कल्याणकारी बनने वाले हैं तो हम सोचते थे विश्व क्या होता है, हमने तो विश्व का नक्शा ही नहीं देखा क्योंकि वो तो स्कूलों में पढ़े नहीं जाकर के, जैसे आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, तो कहाँ विश्व है, हाँ, समझ में नहीं आता था। लेकिन आज कितनी बार वो विश्व का चक्कर लगा चुके हैं, और विश्व कल्याणकारी सारा विश्व यहाँ आता है, जिनकी सेवा उनके द्वारा होती। फिर ऐसे ही जब यूथ बाबा के सामने आते थे, कुमार कुमारियां, तो बाबा हमेशा उनको देखते थे कि ये असंभव को संभव करने वाले हैं। आज की दुनिया में जिस चीज को असंभव समझा जाता है, ये वो आत्माएं हैं, इतनी महान आत्माएं हैं। ग्रस्त वालों को बाबा समझते थे कि ये महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं ना। महात्माएं कहते हैं नहीं, ग्रस्त जीवन में तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाली ये महान आत्माएं हैं। हमेशा इस नजर से बाबा ने उनको देखा। ऐसे ही जो बंधन वाली आत्माएं हैं, चाहे वो बांधेले या बांधेलियां, बाबा हमेशा उनको देखते थे कि ये योग में सबसे ऊंची जाने वाली आत्माएं हैं, इनके जैसा योग और किसी का नहीं हो सकता। ऐसे ही बुजुर्ग जब बाबा के सामने आते थे तो बाबा उनको हमजींस कहते थे, मेरे ही जैसी अनुभवी आत्माएं हैं। जब बहनें आती थी तो शक्ति स्वरूप वंदे मातरम, नारी ही स्वर्ग का द्वार है। आज तक उसे नरक का द्वार कहा गया, लेकिन बाबा ने वंदे मातरम कहा, शिव शक्ति कहा, स्वर्ग का द्वार है, इस स्वमान से सदा उनको देखा। तो बाबा ने जैसे हम बच्चों को ऊंची नजर से देखा, सम्मान दिया, ऐसे ही हमें भी अपने प्रति वही समझना है, तभी हम दूसरों को भी उसी सम्मान की नजर से देख पाएंगे। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जब ऐसे सम्मान में रहते हैं तो पूरे कल्प, सिर्फ इस जन्म नहीं, सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। सतयुग में, त्रेता युग में राज्य अधिकारी बनते हैं तो प्रजा से सम्मान स्वतः मिलता है, और द्वापर युग में पूज्य रूप में जो सम्मान देवात्माओं को मिलता है वो शायद न धर्म आत्माओं को मिलता है, ना ही संसार की महान आत्माओं को मिलता है। कितना विधि पूर्वक पूजा देवताओं की होती है, जो और किसी भी धर्म पिता की नहीं होती है। तो कितने सम्मान से आज भी हमारे पूज्य स्वरूप को देखते हैं आत्माएं, लेकिन स्वमान में विघ्न कब आते हैं, स्वमान में स्थित रहने में विघ्न कब आते हैं? देह अभिमान तो बताया, उसके अलावा जब माया आ जाती है। माया भी अनेक रूपों से आती है। अगर हम स्वमान में हैं, तो माया हमारी दासी होती है, लेकिन माया का प्रभाव हमारे पर आ गया तो स्वमान अपने आप खत्म हो जाता है। बाबा कहता है स्वमान की स्थिति वो ऊंची स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति सीट पर होता है, तो जब वो सीट पर होता है तो सारे ही लोग उसका ऑर्डर अपने आप मानते हैं, क्योंकि वो सीट की पावर है। अगर वो अपनी सीट से नीचे आ जाता है तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेगा। आज जो प्राइम मिनिस्टर है, जो थे मानो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जब वो अपनी सीट पर थे तो नेचुरली पूरे देश में जो वो ऑर्डर देंगे वो पूरा देश, सभी स्टेट उसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे। अब वो सीट पर नहीं है, अब वो कितने भी ऑर्डर देते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्वमान की वो सीट हमारी जो है वो इतनी ऊंची है कि अगर उस स्थिति में हम हैं तो माया की हिम्मत नहीं है, मतलब माया हमारे ऑर्डर में चलने वाली है। जिसको बाबा कहता है वो सांप भी शेष शैया बन गए। विष्णु को किस रूप में दिखाते हैं कि वो शेष शैया पर लेटे हुए हैं। वो पांच फन किसके हैं? माया के पांच विकारों के हैं। तो माया उस रूप में सेवाधारी बन जाती है, लेकिन अगर हम सीट से उतर गए तो फिर कोई ऑर्डर अब माया नहीं मानने वाली है, और किसी ना किसी पुराने संस्कार का माया के वश होकर के वार हमारे ऊपर होता है। फिर वो चाहे काम के रूप में हो, क्रोध के रूप में हो, लोभ के रूप में हो, मोह के रूप में हो, अहंकार के रूप में हो। और अगर ऐसा है तो फिर इसका रूप परिवर्तन करना है। इसे बाबा हमें कहते हैं कि अगर काम विकार है तो तुरंत उसको शुभ भावना, शुभ कामना में परिवर्तन कर दो, उस परिवर्तन की शक्ति को यूज करो। क्रोध आता है तो क्रोध अग्नि को योग अग्नि में बदल दो, उसको दूसरे के ऊपर नहीं, लेकिन योग अग्नि में बदलेंगे तो वो अपने ही विकर्म को विनाश करेगी। ऐसे ही लोभ आता है तो उसे शुभ लोभ में बदल दो। शुभ लोभ क्या है? मैं बाप समान श्रेष्ठ आत्मा बन जाऊं, बाप समान बन जाऊं, वो लोभ नहीं, दुनिया वाले जो लोभ होते हैं, संपूर्ण और संपन्न स्थिति बनाने का भले ही लोभ हो, एक इच्छा रखने की बाबा हमें छुट्टी देते हैं। हद की इच्छाओं की बात नहीं ना, मेरे पास अच्छा मकान हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, इतना धन हो जाए, या और भी इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, वो नहीं। अगर हम उस स्थिति में हैं तो ये प्राप्तियां, तो बाबा कहता है सूर्य के सामने आप चलेंगे तो परछाई अपने आप पीछे आएगी। प्रकाश की तरफ अगर आपका मुंह है तो परछाई को पकड़ने की जरूरत नहीं है, परछाई पीछे आने वाली है। तो ये सब चीजें परछाई के समान है। अगर ज्ञान सूर्य के सम्मुख आप हैं, बाबा के साथ आपका योग है, तो प्रकृति दासी होती है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सोचने से पहले ही प्राप्ति हो जाती। इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति है वो ये है। देवताओं को इच्छा मात्रम अविद्या कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि संकल्प करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही सर्व प्राप्ति है। तो लोभ क्या होना चाहिए? वो ये लोभ, उसमें परिवर्तन कर दो। और जो मोह है उसको भी शुद्ध मोह में। कौन सा शुद्ध मोह? मेरा कौन है, ये सब बाकी मेरे मेरे नहीं, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक बाबा है, उस मेरे को इसमें बदल दो। और अहंकार भी बाबा कहता है शुद्ध अहंकार, जिसे हमने स्वमान कहा, कि वो स्वमान में बदल जाए। तो ये है, स्वमान से हम मायाचीत बन जाते हैं, और मायाचीत बनते हैं तो फिर जगत जीत बन सकते हैं। तो अभी कुछ समय हम सोमान का आपको अभ्यास कराएंगे। अपने मन को बाबा ने जो अलौकिक स्मृतियां दिलाई हैं, उसमें स्थित करते हुए अनुभव करें। मैं महान भाग्यवान आत्मा हूं, स्वयं भगवान ने मुझे इस संसार से चुनकर अपना बच्चा बनाया है। मैं कोठों में कोई, कोई में भी कोई, विशेष आत्मा हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हूं। बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है, मैं ही पूज्य देवात्मा हूं। पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। महान आत्मा हूं, वही कल्प पहले वाली बाबा की चुनी हुई विशेष आत्मा हूं। इस कल्प वृक्ष के तने में ब्रह्मा बाबा के साथ मैं विश्व की आधार मूरत और उद्धार मूरत हूं। समस्त आत्माओं के हम पूर्वज आत्माएं हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, मैं गॉडली यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट हूं, रोज डायरेक्ट भगवान से हमें याद प्यार और वरदान मिलते हैं। भगवान स्वयं हमारा साथी है, हर कर्म में करण करावन हार बनकर बाबा मेरे द्वारा करवाते हैं, बाबा ने मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, अपने सिर का ताज मस्तक मणि बनाया है, हम बाबा के नैनों के नूर हैं और इस जहान के भी नूर हैं। अपने से भी आगे बाबा हमें डबल पूज्य बनाते हैं, डबल ताजधारी बनाते हैं। मैं ही माया चीत, प्रकृति चीत और जगत जीत बनने वाली आत्मा हूं। हम कल्प कल्प के विषयी सफलता। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा ही सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी। मंदिरों में मेरी वही यादगार भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। मैं ही फरिश्ता सुदेवता बनने वाली आत्मा हूँ। अपने फरिश्ता स्वरूप में मैं विश्व कल्याणकारी और विश्व सेवाधारी हूँ। ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड भुजा के रूप में विश्व परिवर्तन के महान कार्य में बाबा के सहयोगी विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। कुछ समय अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप द्वारा विश्व की आत्माओं को शांति की शक्तियों की सकाश देंगे।
अहम शांति। स्वमन की स्मृति से समर्थ स्थिति का अनुभव कैसे कर सकते, आपने बहुत ही अच्छी तरह से सबके सामने स्पष्ट किया। हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।